प्रातः क्लास चल रहा था, 5/11/1966 शनिवार को पहले पेज के मध्यांक में बात चल रही थी ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि बाप सर्वव्यापी होता है। अगर बाप सर्वव्यापी है तो बाप का वर्षा कहाँ गया? वर्षा तो फिर गुम हो जाता है। बात ही इतनी सहज मीठी बात है, बाप माना ही वर्षा। और फिर ये भी है बरोबर कि सर्वव्यापी बाप वर्षा किसको देंगे? अपने बच्चों को ही देंगे ना। तो देखो बात थोड़ी थोड़ी बाबा समझाते हैं, वो बात बुद्धि में रखो और ऐसे युक्ति से समझाओ। भूलो नहीं, क्या समझाने की बात बताई कि अगर बाप सर्वव्यापी है तो वर्षा भी सर्वव्यापी होना चाहिए। और एक व्यापी बाप है तो वर्षा भी एक बड़े बच्चे को देगा, क्योंकि हर एक बाप का दिल बड़े बच्चे पर जाता है। हिस्ट्री को देखें, छोटे बड़े राजाओं ने अपनी राजाई का वर्षा कौन से बच्चे को दिया? बड़े बच्चे को दिया, क्योंकि बड़ा बच्चा बाप का दिल होता है, लगते जिगर होता है। तो बताओ कि वो भगवान बाप कौन सा है? वो सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? और अगर एक व्यापी है तो वो एक कौन है? बाबा ने तो हम बच्चों को दो बेहद के बाप बताए, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य आत्माओं का बाप। मनुष्य उनको कहा जाता है जिनको मन होता है, आत्माओं का बाप उसको मन नहीं कहेंगे। मन तो चलायमान होता है, और जो आत्माओं का बाप है वो तो अमन है, सदा अमन है। उसको मनन चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं मनुष्यों की तरह, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है। और जो त्रिकालदर्शी है उसको मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार, उसको मन तो है ही नहीं। तो सोचना है कि गीता ज्ञान में भगवान ने जो ये हिदायत दी मनमना भव, ये कौन सा भगवान है जो कहता है मत मना भव, मेरे मन में समझा। आत्माओं के बाप को तो मन ही नहीं है, वो कैसे कहेगा मेरे मन में समझा। हाँ, जिसमें मन मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बाप में, उसका अपना मन भी है। तो प्रवेश करने के बाद ये कहा जा सकता है कि वो सुप्रीम सोल बाप जब मनुष्य सृष्टि के बाप से एकाकार हो जाता है या उसे आप समान बना लेता है, तो मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है मत मना भव, मेरे मन में हो जा, मेरे मन में समा जा। और वो ठीक भी है कि मनुष्य सृष्टि का बाप जिसमें सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, तो संग के रंग से उसे आप समान बनाता है। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। और मनुष्य सृष्टि का बाप जब निराकारी बन जाता है तो अपने बच्चों से कह सकता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात मेरे मन में क्या है, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरे मन में एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो मेरे सारे बच्चे जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर हैं, जिनके लिए गाया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक कुटुंब है और कुटुंब भी ऊंचे ते ऊंचा धर्म जो कहा जाता है अल्लाह बल्दीन, उस धर्म के सब भांति हैं। जिस धर्म की फैमिली में एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक मत एक कुल चला आया है, अभी भी भारतवर्ष में प्रायः लोग ऐसे परिवार देखे जा सकते हैं जिन परिवारों का एक मुखिया राजा की तरह होता है और सारा परिवार उसकी मत पर चलता है, पूरे परिवार में एक ही भाषा एक ही मत होगा। ऐसे नहीं कि परिवार का एक भाती कांग्रेस को वोट दे, दूसरा भाती जनता पार्टी को वोट दे, तीसरा भाती बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दे, नहीं, सब एक मत, उसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपल, जो गीता में भी लिखा है कि ये धर्म प्रायः लोप होता है, बहुधा लोप होता है, मोस्टली पूरा लोप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस धर्म का जो धर्म पिता है, वो धर्म पिता ब्रह्मा का बड़ा बच्चा गाया हुआ है। ब्रह्मा को चार पुत्र हुए मानसी सृष्टि के, कौन कौन? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और सनत कुमार ज्ञान योग में सबसे बड़े थे, इसलिए उनको बड़ा माना। और उन सनातन धर्म के उस पुत्र के नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा। जो सनत कुमार आज भी शास्त्रों में योगीश्वर और ज्ञानेश्वर गाया हुआ है, योगियों का भी ईश्वर है शासनकर्ता और ज्ञानियों का भी शासनकर्ता माना जाता है। अब योगियों का शासनकर्ता तो एक ही होगा सारे विश्व में, दो चार आठ तो नहीं हो सकते। शंकर को भी कहते हैं, कृष्ण को भी यही टाइटल दिया है योगी राज। वास्तव में गीता में जो भगवान का उल्लेख किया गया है वो भगवान निराकारी स्टेज वाला है, कविम पुराणम मनुषा सितारम अणोणियां समस्मरित। वो अणु से भी अणुरूप है जो गीता ज्ञान दाता है। गीता ज्ञान दाता है तो मुख से ही गीता ज्ञान देता होगा, ऐसे तो नहीं जैसे मुसलमान मानते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। क्या अर्श में से आवाज आती है? अरे भगवान तो इंद्रियों द्वारा ही कार्य करेगा ना, तो जिस मुख द्वारा समझाया वो मुख को नाम दिया है। शिव शंकर भोलेनाथ, जिनकी चित्र भी नग्न अवस्था में दिखाते हैं, जैनियों में उन्हें तीर्थंकर आदिनाथ कहा जाता है, मुसलमान लोग भी उसे आदम के रूप में मानते हैं, अंग्रेज लोग मनुष्य सृष्टि के पिता को आदम अर्थात आदि के आदमी को एडम के नाम से जानते हैं। जिस एडम को जन्म मरण के चक्र से न्यारा निराकार ज्योति स्वरूप सदा निरहंकारी बाप शिव आत्माओं का बाप नरसे नारायण बनाता है। क्या बनाता है? नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर में रहने वाला, अर्थात जो सदैव कहाँ रहता है? सदैव ज्ञान जल में रहता है, ऐसा ज्ञानी बनाता है, आप समान बनाता है। जैसे आत्माओं का बाप सुप्रीम गॉड फादर ज्ञान का कूट भंडार है, ऐसे अपने बच्चे को भी अकूट भंडार, अकूट भंडार को धारण करने वाला बनाता है। इसलिए गीता में उसका नाम अर्जुन है दिया हुआ, जिसने ज्ञान धन को अर्जन किया। शास्त्रों में उसका नाम भागीरथ भी है, अर्थात भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ वही हो सकता है जो ज्ञान का भंडार हो। ज्ञानी है तो सुखी है और शांत है, अज्ञानी है तो दुखी और अशांत है। इसका मतलब हुआ कि वो अकूट ज्ञान का भंडार निराकार ज्योति बिंदु शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो अपने बड़े बच्चे को आप समान ज्ञानी बनाता है। निराकार है तो निराकार से क्या वर्षा मिलेगा? निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा। ज्ञान का भंडार देता है, ज्ञान भगवान बाप का निराकारी वर्षा है। और निराकारी वर्षा मिलता किसको है? जो मनुष्य सृष्टि का साकार बाप है। और मनुष्य सृष्टि का जो साकार बाप है वो अपने बच्चों को साकारी वर्षा देगा या निराकारी वर्षा देगा? साकारी वर्षा देता है। साकारी वर्षा है स्वर्ग। क्या नाम दिया? स्वर्ग है। स्व माने आत्मा, ग माने गया। स्वर्ग अर्थात आत्म की स्थिति में गया तो स्वर्ग का वर्षा महसूस होता है। देवताएं सब आत्म की स्थिति में रहते, कोई भी देवताएं देवभान में नहीं रहते, इसलिए स्वर्ग का अनुभव करते हैं। वो ही देवात्माएं द्वैतवादी द्वापर युग से जब आते हैं तो स्वयं स्थिति को भूल जाते हैं, द्वैतवाद आ जाता है। दो दो धर्म द्वापर युग से, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो कुल, दो से चार, चार से आठ, मतभिन्नता बढ़ती जाती है, वैमनस्य बढ़ता जाता है, तो उसे द्वैतवाद कहा जाता है। द्वैतवादी होते हैं दैत्य अर्थात राक्षस। शास्त्रों में लिखा है कि दैत्य दिति की संतान थे, जैसे ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण एक मात्रा बढ़ गई, विष्णु की संतान में या फॉलोअर्स वैष्णव, ऐसे ही दिति माता की संतान दैत्य कहे गए। दिति का अर्थ ही है खंडित। अर्थात व्यभिचारिणी, जिससे दैत्य पैदा होते हैं। और दूसरी छोटी माता का नाम था अदिति। अदिति माने अखंड, अखंड ब्रह्मचारिणी की संतान कौन हुए? देवता हुए। तो ये दो माताएं सृष्टि के आदि में बताई गई। पति का नाम कश्यप, काश्य कहते हैं योग के तेज को, माने पीने वाला, जो योग शक्ति के तेज को पीने वाला कश्यप है, उसकी दो स्त्रियां हुई। पहली रचना कहो, क्योंकि पहली रचना स्त्री होती है, तो दो स्त्रियां हुई, दिति और अदिति। दिति से जो दैत्य पैदा होते हैं वो द्वैतवादी युग में पैदा होते हैं, या कहो द्वैतवादी युग में प्रत्यक्ष होते हैं। अदिति की संतान देवताएं अद्वैत देवता कहे जाते हैं। जो सतयुगी त्रेता युगी षष्ठी में प्रत्यक्ष होते हैं, राम कृष्ण के राज्य में गाए जाते हैं, कृष्ण अथवा नारायण का राज्य सतयुग के आदि में गाया हुआ है, बोलते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण और नारायण एक ही आत्मा का नाम है। तो ये बात अच्छी तरह से समझने की है, युक्ति से समझाओ कि निराकार आत्मा और साकार शरीर पांच तत्वों का पुतला, इन दो से मिलकर के जीवात्मा बनती है। ऐसे ही आत्माओं का बाप जो आत्माएं निराकार हैं, आंखों से देखी नहीं जाती, अनुरूप अणु से अनुरूप आत्माओं का बाप, अणु से अणु अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। ना आत्मा के लिए कुछ कर सकती है, ना पांच तत्वों का पुतला शरीर कुछ कर सकता है। दोनों का मेल होता है तब जीवात्मा कही जाती है। जीवित आत्मा अर्थात जीवन धारण करने वाली आत्मा। अगर पांच पुतलों पुतले वाले तत्व शरीर के साथ नहीं है तो वो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। आत्माओं का धाम है आत्मलोक, सोल वर्ल्ड अंग्रेज लोग कहते हैं। सोल वर्ल्ड जो आत्माओं का धाम है, घर है, तो उसका बाप भी होगा। सोल वर्ल्ड में जो भी सोल्स हैं, आत्माएं हैं, उनका बाप है सुप्रीम सोल। वो सुप्रीम सोल सोल वर्ल्ड में असंख्य आत्माओं के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन धारण भी नहीं कर सकता, जीवन धारण भी नहीं करा सकता। जब तक वो सोल वर्ल्ड को छोड़ करके इस साकारी पांच तत्वों वाली दुनिया में ना आ जाए, इस दुनिया में जब आता है तो इस साकारी दुनिया में मनुष्य मात्र ही ऐसे प्राणी हैं जो मन बुद्धि वाले हैं। बाकी प्राणी भी हैं जिनमें आत्मा भी होती है, शरीर भी होता है, लेकिन वो पशु पक्षी जीव जंतु बुद्धिहीन होते हैं। मनुष्य के मुकाबले तो बहुत ही बुद्धिहीन और मनन चिंतन मंथन की भी शक्ति मन उनमें होता ही नहीं। तो मन बुद्धि वाला जो प्राणी है, जो ज्ञान को समझ सकता है, उन प्राणियों के बीच वो परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु उस आत्मा का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य आत्मा मनुष्यों का पिता है, सारी मनुष्य शक्ति का पिता, एक धर्म का नहीं, सभी धर्म पिताओं का बाप, इसलिए कहा जाता है बापों का भी बाप। और सुप्रीम सोल ऐसा बापों का बाप है जिसका कोई बाप नहीं। मनुष्य सृष्टि का तो बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप धर्म पिताओं का भी बाप है। तो जो मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती बुद्धिमान है, पावरफुल मन वाला है, उसी में सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु आत्मलोक का बाप इस मनुष्य सृष्टि में आकर के प्रवेश करता है और मुकर्र रूप से प्रवेश करता है। अर्थात वो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी होकर के सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है। परंतु जिस आकार जिस साकार मनुष्य तन में प्रत्यक्ष होता है एक व्यापी बन करके, वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। अभी तो हम सब जानते हैं, कोई टाइम था इस सृष्टि पर जो सारी वसुधा ही एक कुटुंब थी, जो वसुधैव कुटुंबकम आज तक भी गाया हुआ है, वो तभी संभव हो सकता है जब सारी वसुधा का एक बाप हो। यह सारी पृथ्वी पर जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब एक बाप को अपना ये बाप स्वीकार करें, तब ही कहा जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा साकार है, वसुधा पर रहने वाले मनुष्य साकार हैं, और मनुष्यों का जो बाप है वो भी साकार है। साकार मनुष्य सृष्टि के बाप का वर्षा भी साकार है। परिवार में जो भी बच्चे होते हैं वो किससे पैदा होते हैं? है? है? अरे जल्दी बताओ, किससे? बाप से पैदा हो, माँ से पैदा नहीं होते? है? अरे कोई हॉस्पिटल में जाएंगे देखेंगे कि दोनों से पैदा होते हैं, है? दोनों हैं? किससे पैदा होते हैं? माँ से पैदा होते हैं। ये एक नई बात निकाल दी, माँ बाप दोनों से पैदा होते हैं। अब एक बात बताओ, किससे पैदा होते? माँ से पैदा होते। माँ से पूछो, माँ से पूछो, तुम्हारा जो हद का पेट है, फिर बेहद की माता से भी पूछो, तुम्हारा जो बेहद बुद्धि का पेट है, इस पेट में बच्चा कहाँ से आया? तो क्या कहेगी? है? कहाँ से आया? यही तो कहेगी, इसका बाप है, बाप से आया। बाप का परिचय भी माँ दे सकती है, सुलक्षणी होगी तो जरूर परिचय देगी। कुलक्षणी होगी है, वैश्या होगी तो बाप का परिचय नहीं बताएगी। तो बच्चा कहाँ से आया, मूल रूप में कहाँ से आया? है? माँ से ही आया, बाप से आया, माँ से प्रत्यक्ष रूप में आया और बाप से अप्रत्यक्ष रूप में आया। तो ऐसे ही है ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो भी पत्ते रूपी बच्चे हैं, चाहे पहला पत्ता हो और चाहे 500-700 करोड़ पत्ते हो, उनका मूल जनक कौन है, मूल बाप कौन है? कहेंगे मनुष्य सृष्टि का कोई बाप है जहां से ये मनुष्य सृष्टि रूपी पत्ते निकलते हैं? तो देखो, बाप एक है और उसका छोटा या बड़ा परिवार होता है, उस परिवार में रचनाएं अनेक हैं, बच्चे अनेक हैं। रचयिता एक है, तो जो रचयिता एक है उस एक रचयिता से ही, एक बाप से ही सारी सृष्टि का जन्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब ही कहा जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। सृष्टि का आदिकाल में एक ही था मनुष्य सृष्टि का बाप, और उसी से सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में आत्मा सो परमात्मा, अर्थात ये जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं या इस सृष्टि पर पशु पक्षी पतंगे कीटाणु आदि जो भी आत्माएं हैं, है तो साकार ना, साकार शरीरधारी तो है ना, वो सारा जड़ जंगम संसार ही एक बीज से निकलता है, यही बात गीता में आई है। और गीता के अनेक श्लोकों में ये बात है, लेकिन गीता के उस राज को जिस गीता में राजयोग की पढ़ाई दी गई है, वो राज की बात सिवाय एक परमपिता परमात्मा शिव के और कोई जानता ही नहीं। मनुष्य सृष्टि का बाप भी नहीं जानता। मनुष्य सृष्टि का बाप भी चार अवस्थाओं से गुजरता है, और सारे मनुष्य मात्र भी, कोई भी धर्म के क्यों न हो, सभी चार अवस्थाओं से गुजरते हैं। सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, ये तीन गुणों का आवर्तन होता ही रहता है इस सृष्टि में, बार बार होता है। पहले सतयुग, फिर द्वापर युग, राजो प्रधान, फिर कलयुग तमो प्रधान, फिर वही क्रम चलता है। जब सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है महामृत्यु के समय, तो सभी आत्माएं अपने अपने शरीर छोड़ करके उसे एक ही साकार सो निराकार में समा जाती है, जिसके लिए गीता में आया है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। वो निराकार नहीं कहता है मेरे मन में समा जा, कौन कहता है, है? साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है, जिस साकार मनुष्य सृष्टि के बड़ल्ले में बड़े से बड़ा बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो मुकर्रर रूप से उसको आप समान बनाता है। आप समान माने साकारी से क्या बनाता है, निराकार बनाता है, उसकी यादगार जो साकारी था, साकारी से पुरुषार्थ करके निराकारी बना, अर्थात साकार निराकार का मेल बना, उसकी यादगार के मंदिर और उसकी मूर्ति सारे संसार के विदेशों की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली है। माना उस स्वरूप की सार्वभौम सत्ता है, एक व्यापी सत्ता नहीं है। सारा विश्व उस एक का लोहा मानता है, उस एक से मिलता है, इसलिए भगवान बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता। कोई को सब प्रकार से मिलते हैं, सर्व संबंधों से मिलते हैं, कोई सिर्फ आंखों से देखते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, कोई भले इन आंखों से भी नहीं देख पाते लेकिन अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उसे पहचानते हैं और पहचान करके बुद्धियोग के द्वारा उससे अव्यक्त मिलन मनाते हैं। जैसे यहाँ बैठे हुओं ने, बहुतों ने देखा होगा गांधी जी का फोटो, देखा कितने लोग गांधी जी से मिले हैं, कोई इंद्रिय के सहयोग से, हाथ उठाओ, कोई नहीं। लेकिन गांधी जी को याद तो कर सकते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे ही ये सारी मनुष्य सृष्टि महामृत्यु के समय एक ऐसी पर्सनालिटी संसार में व्याप्त हो जाती है सबकी मन बुद्धि में, कि उसकी याद में हर एक मनुष्य मात्र अपने शरीर को छोड़ करके उसी की निराकारी स्टेज में टिक जाता है, आत्मिक रूप में टिक जाता है। किसी की याद में, किसकी याद में है, जो साकारी सो निराकारी आत्मा है। जिसका चित्र आत्माओं के बाप ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार में बनवाया था, झाड़ का चित्र, षष्ठी वृक्ष का चित्र, जिसका वर्णन गीता में भी है, ऊर्ध्वं मूलं मदशाखः, ऊपर को इसकी जड़ें हैं और नीचे को इसकी शाखाएं फैली हुई, अनेक धर्मों रूपी शाखाएं। जड़ें ऊपर को हैं तो बीज कहां होगा? हैं? बीज भी ऊपर ही होगा। अनेक प्रकार की जड़ें हैं तो बीज भी अनेक प्रकार के होंगे या नहीं होंगे? जैसे कभी कभी कहीं कहीं कोई वृक्ष देखा होगा, एक ही वृक्ष में पीपल भी है, उसी वृक्ष में नीम खड़ा हुआ है, माने एक ही वृक्ष में अनेक प्रकार के वृक्ष खड़े हुए हैं। ऐसे ही ये सच रूपी वृक्ष है जिसमें अनेक धर्मों की शाखाएं प्रस्फुटित होती है। अनेक धर्मों वाला ये वृक्ष है। उसकी जड़ें भी उतनी ही हैं जितनी उसकी शाखाएं हैं। देखा होगा वृक्ष का एक तरफ का तना या डाली काट दो, या वृक्ष की एक तरफ की जड़ काट दो तो उसी ओर की वो डाली क्या होगा? सूख जाती है। इसी तरह से ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है जिसकी अनेक प्रकार की डालियां, चाहे दाईं ओर की डालियां हो चाहे बाईं ओर की डालियां हो, वो अपनी जड़ों से रस खींचती हैं। जो डाली जिस जड़ से कनेक्टेड होगी उसी से अपना रस खींचती है। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। इसमें जो अनेक धर्म हैं, सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण सूर्यवंश, त्रेता में 14 कला चंद्रवंश, द्वापर में 8 कला इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, और कलयुग में उनकी अनेक प्रकार की शाखाएं हैं। वो सभी धर्म मुख्यतः 10 धर्म, उसकी 10 प्रकार की जड़ें मुख्य हैं। इसीलिए भारत में भगवान के कितने अवतार गाए हुए हैं? 10 अवतार गाए हुए हैं मुख्य, माना 10 धर्म हैं तो उनके 10 बीज भी हैं, और उन सब बीजों का मूल एक बीज है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप, उसका संसार में गायन हुआ है क्या? शंकराचार्य ने लिखा है, अगर कोई आत्मा है वाकई अस्तित्व में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो वो एक ही आत्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या बोला शंकराचार्य ने? क्या बोला? एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, इतना पावरफुल। और शास्त्रों में आया भी है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको नमः नहीं, जो परम ब्रह्म है एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी को नमन करता हूं। नाम क्या दिया? परम ब्रह्म। माने ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, लेकिन परम पाटधारी ब्रह्मा जिससे सारी सृष्टि का जन्म होता है वो सिर्फ एक ही है। उसी के बुद्धि रूपी पेट से ये सभी धर्मों की मनुष्य आत्माएं टाइम टू टाइम जन्म लेती है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। तो बताओ, एक व्यापी कौन है और सर्वव्यापी कौन है? सर्वव्यापी है तो मनुष्य सृष्टि में गायन है क्या कि भगवान सर्वव्यापी? नहीं तो ये गायन कहां से आया? संकल्प का बीज है तो इसका विस्तार होगा। संकल्प का बीज ही नहीं तो उसका विस्तार भी नहीं हो सकता। वेद की ऋचाओं में लिखा है, हे भगवान, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अभी सर्वव्यापी मानते हैं। इसका मतलब हुआ जब तक इस सृष्टि में द्वापर के आदि में सात्विकता थी, जब मनुष्यों ने वेदों की रचना की थी, खासकर वेद व्यास में, उस समय द्वापर युग सात्विक स्टेज में था या द्वापर युग तामसी स्टेज में था? सात्विक स्टेज में था। तो सात्विक स्टेज में मनुष्य भी कैसे होंगे? सात्विक स्टेज वाले, उनकी मनोबुद्धि भी सात्विक स्टेज वाली थी। तब उन्होंने लिखा था, तब वो जानते थे, मानते थे कि हम देह नहीं है, हम क्या है? आत्मा है, और हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर एक ही मनुष्य मात्र है, जो सदाकाल इस सृष्टि पर गाया हुआ है, अस्तित्व है उसका। कौन है वो मनुष्य मात्र? नाम बताओ। शंकर, प्रजापिता नाम नहीं शास्त्रों में, शंकर की मान्यता है शास्त्रों में। ये न उसका जन्म होता है, न उसकी महामृत्यु में मृत्यु होती है, न उसका कोई माता है न कोई पिता है, वो तो अनादि है, अजन्मा है। वो ही मनुष्य सृष्टि पर बाप समान है, मनुष्य सृष्टि का बाप। वो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद रहता है, उसका विनाश कभी होता ही नहीं, और सबका विनाश होता है, और विनाश किसका नहीं होता? सत्य का विनाश नहीं होता कि असत्य का विनाश नहीं होता? सत्य का विनाश और सत्य अनेक होंगे कि सत्य एक ही होगा? ये सारी मनुष्य सृष्टि कलयुग के अंत में झूठ खंड बन जाती है। इस झूठ खंड में सब झूठे, एक ही सच्चा साबित होता है, जो अजर अमर अविनाशी है। महामृत्यु के समय भी वो पांच तत्वों से छरित नहीं होता। इसलिए वो भी अक्षर हो जाता है। इसलिए गीता में कहा है दो प्रकार की आत्माएं हैं सामान्यतः, उनमें एक है अक्षर और बाकी सब हैं क्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, क्षीण होने वाली। और एक है अक्षर, वो अक्षर आत्मा है आत्माओं का बाप, सत्य धाम का वासी, सदा सत्य धाम में रहने वाला। अगर इस झूठ खंड में आता भी है, झूठे से झूठे मनुष्य में आता है, तमो प्रधान से तमो प्रधान मनुष्य में आता है, पतितम कामी कांटे में आता है, तो भी उस सुप्रीम सत्य को असत्य का संग का रंग नहीं लगता है। वो है आत्माओं का बाप। बाकी सृष्टि पर चाहे कितने भी बड़े से बड़े, ग्रेट से ग्रेट धर्म पिताएं गाए गए हों, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ग्रेट फादर्स गाए हुए हैं, वो सब संग के रंग में आते जरूर है। संग के रंग में आकर खुद भी नीचे गिरते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी संग के रंग में ला करके नीचे गिराते हैं। हाँ, मनुष्य सृष्टि में जो भी धर्म पिताएं हैं, देहधारी धर्म पिताएं, उन देहधारी धर्म पिताओं में एक ऐसा भी देहधारी धर्म पिता है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप गाया हुआ है। वो एक ही धर्म पिता है अव्वल नंबर का, जो पुरुषार्थ करके ऐसी स्टेज प्राप्त करता है। क्या कि देह होते हुए भी जैसे देह नहीं, आंखें हैं लेकिन जैसे आंखें है ही नहीं, कान हैं जैसे कान है ही नहीं, इंद्रियां हैं परंतु इन इंद्रियों का रस लेता ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या इस संसार की। ये इंद्रियां भी इस संसार की हैं, इस संसार से परे हैं, इस संसार की। तो इंद्रियों का कोई भी प्रकार का सुख लेने मात्र की इच्छा है ही नहीं, माना इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्टेज पुरुषार्थ करके धारण करता है। वो ही एकमात्र देहधारी धर्म पिता है जो देह को धारण करते हुए भी देह के अंगों से कोई वास्ता नहीं रखता। फरिश्ताओं में सबसे ऊंचा फरिश्ता बनता है, जो कहते हैं तीन फरिश्ताएं, ब्रह्मा फरिश्ता, विष्णु फरिश्ता और शंकर फरिश्ता। तीनों की स्टेज अपनी अपनी अलग अलग है। तीन पुरियां दिखाई जाती हैं, ब्रह्मापुरी उससे ऊंची, विष्णुपुरी और उससे ऊंची शंकरपुरी। जिस शंकर का नाम सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है, जो सदा शिव सदा काल निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आकर के आप समान 100% ऐसी मूर्ति तैयार करता है जो बाप समान गाई हुई है। इसलिए उस मूर्ति शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया में और कोई ऐसी मूर्ति नहीं है, नग्न मूर्ति निराकार की यादगार, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया। क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि काम के आधार पर नाम पड़ता है, और कोई भी देवता की ऐसी मूर्ति नहीं है, कोई मनुष्य मात्र नेता की ऐसी मूर्ति नहीं है, महात्मा की मूर्ति नहीं है, कोई राक्षस की ऐसी मूर्ति नहीं है जो पुरुषार्थ करके निराकारी स्टेज को धारण कर ले। वो एक ही है जो बाप समान निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है और उसकी पूजा शिव के मंदिर में गाई हुई है, आज भी पूजनीय है। तो इस बात को युक्ति से समझाओ। क्या क्या बात? कि परमपिता जिसका कोई पिता नहीं है, जो परमात्मा का आधार लेता है, कैसी आत्मा? परमात्मा। पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा का आधार लेता है परमपिता सुप्रीम सोल शिव। वो सर्वव्यापी नहीं है क्या? कौन सर्वव्यापी नहीं है? है सुप्रीम सोल अर्थात आत्माओं का बाप सर्वव्यापी नहीं है, परंतु संसार में, आज सारे संसार में सभी धर्म के लोगों में ये मान्यता व्याप्त है कि परमात्मा भगवान सर्वव्यापी है। तो संकल्प तो व्याप्त है ना, संकल्प रूपी बीज तो पड़ा हुआ है ना, तो सच्चाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं तो ये गायन कहां से हुआ? किस बात का गायन है? कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जैसे परिवार में जो भी भांति हैं, माता से लेकर के छोटे से छोटे बच्चे तक, सभी परिवार के भांति उनके अंदर एक ही बाप व्याप्त है। है या नहीं है? एक ही बाप का खून है या नहीं है? एक ही बाप का खून व्याप्त है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है बाप, और जो अविनाशी है, जिसका महामृत्यु के समय भी विनाश नहीं होता, शरीर का भी विनाश नहीं होता, आत्मा का भी विनाश नहीं होता, वो आत्मा बुद्धियोग मात्र से परम धाम वासी होती है, लेकिन वास्तव में शरीर छोड़ करके परम धाम वासी नहीं होती। शरीर में रहते रहते मन बुद्धि रूपी आत्मा परम धाम वासी का अनुभव कर लेती है। वही आत्मा इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद है, इसीलिए ब्रह्मा मुख से गीता के भगवान ने बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम सिर्फ एक ही शिव बाबा है, बाकी कोई भी चीज सदा काल व्यापी नहीं, सदा काल नहीं है। अब इस सृष्टि पर चार युगों में वो शिव बाबा किसी को अनुभव हो या अनुभव न हो, बहुतों को अनुभव भी होता है कि भगवान इस सृष्टि पर है, लेकिन वो अनुभव साक्षात्कार के आधार पर है, दिव्य दृष्टि के आधार पर है या स्थूल दृष्टि के आधार पर है, है? मीरा को भगवान, सूरदास को भगवान, तुलसीदास को भगवान देखने में आते हैं, वो साक्षात्कार की बात है या प्रत्यक्ष की बात है? साक्षात्कार की बात है। इस सृष्टि पर है वो मनुष्य सृष्टि का बाप, जो पुरुषार्थ करके अपने को भगवान बाप के समान बनाए लेता है, वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदैव रहता है। कोई न कोई जन्म में हीरो पाटधारी बनकर रहता जरूर है। हीरो पाटधारी ड्रामा के चारों ही सीन में पार्ट बजाएगा या नहीं बजाएगा? बजाता है। इसलिए बताया, देखो बात थोड़ी थोड़ी बाबा समझाते हैं, वो बात बुद्धि में रखो और युक्ति से समझाओ, इस युक्ति को भूलो नहीं। तो बाप तो है ही, बाकी सभी ब्रदर्स हैं। क्या बाप तो है ही माने है या नहीं है? है ही, जैसे बच्चे हैं ही वैसे बाप भी है ही, सभी प्रदस्य हैं, वो एक बाप है। क्या बताया? ये एक बाप नहीं, कौन? ब्रह्मा बाप नहीं, वो बाप है। बरोबर, वो सभी ब्रदर्स को एक बाप आय करके शांति और सुख का वर्षा देते हैं। आय करके माने साकार रूप में पहचान देते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। कोई तो होगा ना सृष्टि के आदि काल में। जो सृष्टि के आदि में सृष्टि सत्व प्रधान होगी या रजो तमो प्रधान होगी है? आदि काल में सृष्टि सत्व प्रधान सृष्टि का सुख का वर्षा बाप आकर देते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप, साकार बाप, साकार सुख का वर्षा देते हैं। और निराकार बाप, निराकारी ज्ञान का वर्षा देते हैं। भाई सतयुग के आदि में ये सुखदाम है क्या? क्या सुखदाम है? ये ब्राह्मणों की सृष्टि का संगठन, सत्व प्रधान संगठन। कैसा संगठन? संग दोष और अन्न दोष से सर्वथा मुक्त संगठन। कि दोष वाला है सृष्टि के आदि में सब प्रकार के दोषों से मुक्त ये सुखदाम है। उनको राजयोग सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? ऐसा योग सिखलाते हैं जिस योग में राग भरा हुआ है। क्या राग भरा हुआ है? कि संग के रंग से सदगति होती है और कुसंग से दुर्गति होती है। सत्संग क्या है और कुसंग क्या है ये भी बात बताते हैं। सत्य है एक क्या और असत्य है अनेक, झूठे हैं अनेक। तो एक को पहचान करके एक का संग करेंगे। संग इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? चलो मन से संग किया, बुद्धि से संग किया। मन और बुद्धि तो तब ही याद करेगी ना जब साकार में अनुभव किया होगा। किसी ने रसगुल्ला खाया है, देखा है, अनुभव किया है तो रसगुल्ले को याद करेगा। खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया तो याद करेगा? याद ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही भगवान बाप है तो भगवान बाप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? है, मिलना चाहिए। अब ये बात दूसरी है, अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार कि कोई को सब प्रकार से महसूस होता है, सब प्रकार के संबंधों से बाप की अनुभूति होती है। और कोई को सब प्रकार के संबंधों से बाप की अनुभूति नहीं होती, सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं होती। और बेहद का बाप भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि जिस संबंध से संगम युग में बाप की अनुभूति नहीं कर सकेंगे तो जन्म जन्मांतर उस अनुभूति के लिए, उस संबंध के लिए तड़पते रहेंगे। इसलिए बताया कि अतीन्द्रिय सुख देखना पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जरूर उन गोप गोपियों ने संगम युग में उस आए हुए बाप को पहचान करके, जो एक ही बाप का पार्ट बजाता है, एक ही टीचर का पार्ट बजाता है और एक ही अंत में सदगुरु का पार्ट बजाता है, उस बाप से संग का रंग लेकर के सब प्रकार की अनुभूतियां की हैं, तो अनुभूति करने के आधार पर वो आत्माएं संपन्न स्टेज जब बुद्धि योग की प्राप्त करती हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव कर सकती है। अतीन्द्रिय सुख माने इंद्रियों से अतीत, अतीत माने बीता हुआ, क्या इंद्रियों से परे का सुख। उस सुख में इंद्रियों की जरूरत रहती ही नहीं। इसलिए उसको इंद्रियातीत सुख कहा जाता है। तो ये जो सुखदान है, सतयुग के आदि में उन ब्राह्मणों को सिखलाते हैं जो आत्मा की संपन्न स्टेज को प्राप्त करते हैं, और बाकी तो हिसाब किताब चुक चुक करके उनको जरूर वापस जाना ही है। माने जो राजयोग सीखते हैं, जिनको राजयोग सिखलाते हैं, वो तो सतयुग के आदि में सुख ही सुख सोलह कला संपूर्ण भोगते हैं। बाकी जो नहीं भोगते हैं, अभी फाउंडेशन जिनका नहीं पड़ता है संगम में, उन आत्माओं को तो चाहे देह के कर्म भोग से बीमारी आदि से, चाहे प्रकृति के जो दिए हुए दुख हैं, जैसे भूकंप होता है, झंझावात आता है, जलमयी हो जाती है, होती है ना प्रकृति जब प्रकोप करती है तो उसमें दुख भोगते हैं ना कोई प्राणी, तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब से अपना हिसाब किताब चुक चुक करके, या तो धर्मराज की सजाएं खा करके बाकी आत्माओं को तो वापस जाना ही जाना है। जबकि वो है सतयुग की आदि में, दिखलाना तो होता है ना। इस सतो प्रधान सतयुग की राजधानी कौन सी थी, कैसी थी, कितनी बड़ी थी, दिखलाएंगे या नहीं दिखलाएंगे। आत्माएं अनुभव करेंगी या नहीं करेंगी, तो बाकी आत्माएं कहां हैं। जो आत्माएं नई दुनिया की छोटी राजधानी का अनुभव करती हैं, दुनिया की सबसे जास्ती सत्व प्रधान राजधानी का अनुभव करती हैं, उन आत्माओं के अलावा दूसरी 500-700 करोड़ आत्माएं कहां गई? वो बाकी आत्माएं शांति धाम में जाती है। कहां जाती है? शांति धाम में जाती है, जहां आत्मा शांत रहती है। क्या कोई प्रकार की अशांति नहीं होती है? जैसे उनको तेज बुखार आता है, शरीर की एक एक नस में दुख दर्द व्याप्त हो जाता है, बहुत बेचैनी होती है, तो क्या कहेंगे, आत्मा शांत है या अशांत? अशांत है। पर जब बुखार एकदम उतर जाता है, उतरता है या नहीं, नॉर्मल हो जाता है, तो क्या अनुभव होता है? शांति का अनुभव होता है। और जब शांति का अनुभव होता है दुख भोगने के बाद, तो गहरी नींद आती है या नहीं आती है? है, गहरी नींद आती है। उसे गहरी नींद में स्वप्न भी नहीं आता। ऐसे ही 84 जन्म आत्मा दुख और सुख का भोग करके और कलयुग के अंत में अति दुख का भोग करके जब बहुत अशांत हो जाती है, तो ये शरीर रूपी चोला छोड़ देती है, जैसे सामान्य मृत्यु में भी होता है। ऐसे ही महामृत्यु के समय सभी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर रूपी चोला छोड़ करके पांच तत्वों के बंधन से मुक्त होकर के मुक्ति धाम का अनुभव करती है। क्या कहा? मुक्ति धाम का अनुभव कौन करती है? है? तुम सब सीताएं हो, मना सब रावण की जेल में हो। है? सीताएं क्यों कहा? तुम सब सीताएं हो माना, सीताएं माना कहां हो? रावण की जेल में हो, बंधन में हो। तुम सब सीताएं हो, राम है एक। तो राम बंधन में है या सीताएं बंधन में? सीताएं बंधन में। एक राम है छुड़ाने वाला, वो भी बंधन में है। है? बंधन में नहीं, बंधन में अनुभव नहीं करता। फिर क्यों कहता है मैं भी ब्रह्मा के बंधन में बांधा हुआ हूं? ब्रह्मा मुख से कहता है कि नहीं? क्या है? मैं भी ब्रह्मा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो बांधा हुआ हूं तो वो भी सीता हो गया कि नहीं? है? तो वो कौन सी सीता है जो कहती है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं? वो कौन सी अव्वल नंबर सीता है? अरे अरे राम वाली ही आत्मा, त्रेता वाला राम नहीं, संगम युग में राम वाली आत्मा। रमिते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं, खेलते हैं, जिसके ज्ञान का अनुभव करते हैं, वो आत्मा। पुरुषार्थी जीवन में समर्थ है, सदशक्तिवान है या असमर्थ है? है असमर्थ है, इसलिए तो शंकर के रूप में दिखाया है याद करते हुए। अगर स्वयं सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, तो फिर याद करने की क्या दरकार? तो वो भी क्या हुई, सीता हुई या नहीं हुई? है वो भी सीता है। तो कौन कहता है तुम सब सीताएं हो और राम है एक? कौन कहता है? हैं? शिव सुप्रीम सोल साकार शरीर में प्रवेश करके कहता है कि तुम सब सीताएं हो। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप से लेकर के 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक, तुम सब क्या हो? सीताएं हो। मुझे कहते हैं राम बाप, जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं, खेलते हैं, आनंद मनाते हैं। सबसे बड़ा योगी कौन? अरे योगी होंगे तो योगियों का, योग लगाने वालों का कोई मुखिया ईश्वर भी होगा, शासनकर्ता भी होगा या नहीं होगा? है कौन? शंकरवादी आत्मा भल पुरुषार्थी है तो वो भी आत्मा योग लगाने वाली है, पुरुषार्थी है, संपन्न नहीं है। जब संपन्न हो जाती है तब नहीं कहेंगे क्या? क्या योगी नहीं कहेंगे? तो सबसे बड़ा योगी साबित हो गया तब ये नहीं कहेंगे कि वो सीता है, बंधन में है। संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने के बाद निर्बंधन है या पुरुषार्थी जीवन में निर्बंधन है? है पुरुषार्थी स्टेज में नहीं कहेंगे कि निर्बंधन है, क्या कहेगा? मैं भी ड्रामा के बंधन में। तो देखो वो गाया हुआ है सुख और शांति का दाता, वो गाया भी ऐसे जाता है ना, गायन पूजन इस संसार में होता है ना, किसका होता है? हैं? गायन और पूजन इस संसार में किसका होता है? है ना, हो तो गए, हो तो सभी गए। पूर्व कल्प में सारे ही 500-700 करोड़ पाठधारी सभी हो गए। हैं? हाँ, गाया भी जाता है, पूजन भी उनका होता है। जिन्होंने पूजनीय कर्म किया है पूजा किसकी होती है? पवित्र की पूजा होती है। भगवान बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, मैं न पूज्य बनता हूँ और न पुजारी बनता हूँ। तो शिव के मंदिर में शिवलिंग की जो पूजा होती है वो किसकी होती है? है? हाँ, कोई परम पुरुषार्थी आत्मा है जिसके
तन में रथ में
भगवान आते हैं मुकर्रर रूप से, जिसको महाभारत में अर्जुन नाम दिया है, ज्ञान अर्जन करने वाला, भाग्य का सदभाग्य का अर्जन करने वाला, उसका संपन्न रूप ये गाया जाता है कि शरीरधारी तो है लेकिन निराकारी भी है, क्या साकारी भी है और निराकारी भी है। निराकारी कैसे? अव्यक्त कैसे? अव्यक्त माने निराकार। शिवलिंग अव्यक्त कहेंगे, वो तो देखने में आता है, शिवलिंग देखने में नहीं आता है? तो अव्यक्त कैसे, निराकार कैसे? हाँ, रथ तो है लिंग लेकिन उसकी कर्मेंद्रियां देखने में नहीं आती। कर्मेंद्रियां जिनसे सुख और दुख भोगा जाता है वो कर्मेंद्रियां जैसे कि है ही नहीं। आंखें हैं परंतु होते हुए भी इस संसार को, इस संसार के रस को, सुख और दुख को भोगता ही नहीं। कान हैं लेकिन इस संसार की ग्लानि को सुनते हुए भी सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। तो इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियों से कोई भी प्रकार का अनुभव मन बुद्धि के द्वारा लेता ही नहीं। सिर्फ एक ही इंद्रिय दिखाई गई है, लिंग इंद्रिय, और वो इंद्रिय भी पूजी जाती है। पूजा किसकी होती है? है भिखारी की। अपवित्र माने भिखारी। अपवित्र कर्म करे तो भिखारी। भिखारी का मतलब है विपरीत कार्य। कार्य माने कार्य, वि माने विपरीत। काहे के विपरीत? जो गीता ज्ञान में कर्म सिखाया गया है, कर्म अकर्म विकर्म की गति, भगवान ने जो कर्म अकर्म विकर्म की गति सिखाई उसके विपरीत जो कर्म किया जाए वो क्या हुआ? विकार। ऐसा विकारी नहीं है। कैसा? जैसे इस दुनिया के सभी मनुष्य मात्र कलयुग के अंत में भिखारी पुरुष हो जाते हैं। भगवान के महावाक्यों में पुरुषों को क्या कहा है? दुर्योधन, दुःशासन। दुः माने दुख देने वाला युद्ध करता है। कैसा युद्ध? दुख देने वाला युद्ध। अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं, मर्जी से लड़ते हैं या बिना मर्जी के लड़ते हैं? तो जो मर्जी से युद्ध हो रहा है उसको बलात्कार कहेंगे, जबरदस्ती कहेंगे? नहीं कहेंगे। और ना उसकी इच्छा है ना उसकी इच्छा है, फिर भी लड़ाने वाले लड़ा देते हैं। माया लड़ा देती है तो क्या कहेंगे? है इच्छा से हुआ, उसको प्यार कहेंगे? प्यार कहेंगे या प्यार के विपरीत कहेंगे, प्यार के विपरीत कहेंगे। तो ऐसा जो युद्ध करते हैं काम इंद्रिय से, खास दुष्ट युद्ध करते हैं, दूसरे की इच्छा हो या इच्छा न हो तो भी जबरियन करते हैं, उनको दुशासन और दुष्ट युद्ध करने वाला दुर्योधन का है। दुशासन को क्या दिखाया है शास्त्र में, है जबरदस्ती द्रौपदी के बाल पकड़ करके, हाथ पकड़ करके खींचते हुए जबरियन ले जाता है। तो बाप भी कहते हैं, खासकर बांधेली माताओं के लिए, कि अगर तुमको हाथ पांव बांध करके चारपाई से कोई विकार भोगता है तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं है, तुम सिर्फ बाप की याद में रहो, मुर्दा हो जाओ। उन दुर्योधन दुशासनों को धर्मराज बाप छोड़ने वाला नहीं है। तो बोला, जो गाया जाता है, जिसकी पूजा होती है, दुनिया का सबसे बड़ी पूजा शिव के मंदिरों में लिंग की है। दुनिया की खुदाइयों में सबसे जास्ती मूर्तियां लिंग मूर्तियां मिली हैं, तो जरूर उनका गायन और पूजन सबसे जास्ती है और आज भी है। वो ही सुख शांति का दाता है। क्या, कौन सुख शांति का दाता है? जो साकार भी है और निराकारी स्टेज भी धारण करता है, जो सदैव निराकारी है वो शांति धाम में ले जाएगा। सुखधाम में ले जाएगा, क्या ले जाएगा? अरे खुद जाएगा, खुद सुखधाम में जाता है। कौन है? आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव सदाकाल शांति धाम का वासी है या सुखधाम का वासी है? सुखधाम का वासी तो होता ही नहीं, और जो खुद ही सुखधाम का वासी नहीं है वो दूसरों को सुखधाम में ले जाएगा? ले जाएगा नहीं ले जाता। प्रैक्टिकल में ले जाने वाला कौन हुआ है? वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसकी याद में झाड़ के चित्र के ऊपर वो नग्न मूर्ति बैठी हुई दिखाई गई है, कि सभी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके उसकी याद में समा जाती हैं और उसी बिंदु रूप स्टेज में लीन हो जाती है। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। वो कहने वाला जो मेरे मन में समा जा कहता है, वो किस स्टेज में टिका हुआ है? निराकारी बिंदु रूप स्टेज में टिका हुआ है। तो जिनको कह रहा है वो भी किस स्टेज में समा जाए? वो भी बिंदु रूप निराकारी स्टेज में समा जाए। माना सबके संकल्प एक संकल्प में, सभी मनुष्य आत्माओं के संकल्प एक मनुष्य के संकल्प में टिक जाते हैं, उसको कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। क्या, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है? ऐसे नहीं कि परम पिता में लीन हो जाती है। परम पिता वो है जिसका कोई पिता नहीं, और परमात्मा वो आत्मा है परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जिस हीरो पार्टधारी की याद में सभी मनुष्य आत्माएं उसी रूप में टिक जाती है, जिस निराकारी रूप में, ज्योति बिंदु रूप में वो परम आत्मा टिक जाता है। इसलिए परमात्मा और परमपिता, इनमें कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कम, कौन कम शक्तिशाली है? परमात्मा सर्वशक्ति है। परमपिता जिसका कोई पिता नहीं वो ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो सदा सत्य है। क्या? सदा सत्य है। और जिसमें प्रवेश करता है वो सदा सत्य है, है? सदा सत्य है नहीं? सत्य कर्म और असत कर्म, बाहुबल चलाना, हिंसा करना, ये सत्य कर्म है या असत कर्म है? है असत कर्म है। तो द्वापर युग से जो षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो है वो सत्य कर्म ही करता है, या संघ के रंग में आकर असत कर्म हिंसा भी करता है? है हिंसा भी करता है, तो उसको सदाशिव नहीं कह सकते। जिसको सदैव सदाशिव कहें, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के जो भी कर्म करे, जैसा भी कर्म करे कर्म इंद्रियों द्वारा, उसका रिजल्ट सदा शिव ही आवे, सदा कल्याणकारी आवे, उसको कहेंगे सदा शिव। शिव नेत्र, आंखें अगर लाल लाल हो जाएं, तुरस हो जाएं, भयंकर वाइब्रेशन छोड़ने वाली बन जाएं, तो नेत्र कल्याणकारी हुआ या अकल्याणकारी हुआ? अकल्याणकारी हुआ। लेकिन शिव, शिव का नेत्र सदा कल्याणकारी। तो जो सदा शिव है, सदा सत्य है, तीनों कालों में सदा सत्य, वो सर्वशक्तिवान है, सदैव सर्वशक्तिवान, वो ही परमपिता है, सभी आत्माओं का पिता है। और जो सदा नहीं है, संगम युग में पुरुषार्थ करके बनता है विश्व कल्याणकारी, सदगुरु, सदगुरु मिला दलाल, दलाल साकार होगा निराकार? साकार, साकार भी है और सतगुरु भी है। तो संगम युग में तो है, सतयुग में भी है, त्रेता में भी सत्य है। माना था भी सत्य, लेकिन द्वापर युग में सदा कल्याणकारी कहेंगे, कहेंगे है? युद्ध करता है हिंसा के या नहीं करता? तो प्रभावित हो जाता है या अप्रभावित रहता है? प्रभावित हो जाता है देहधारी धर्म गुरुओं से, धर्म पिताओं से। देहधारी धर्म पिता हैं, देवान में रहते हैं, देवान में रहने वाले हिंसा ही सिखाएंगे। और जो देवान में कभी नहीं रहती आत्मा, वो शिव की आत्मा, किसकी आत्मा का ही नाम बिंदु शिव है, वो तो कभी नहीं सिखाता क्या हिंसा करो, देह की इंद्रियों के द्वारा हिंसा करो, वो नहीं सिखाता। इसलिए एक है सदाशिव और जिसमें प्रवेश करता है उसको सदाशिव नहीं कहेंगे। कल्याणकारी तो है लेकिन पुरुषार्थ करके कल्याणकारी बनता है, विश्व कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी नहीं है। तो पता चला सुख और शांति का दाता कौन हुआ, शांति दाता कौन हुआ और सुखदाता कौन हुआ है? शांति दाता शांति धाम का वासी, सदा सप्त धाम का वासी, सदा आत्मलोक का वासी। जो इस षष्ठी पर भी आकर के पार्ट बजाता है तो भी है सप्तधाम में ही मन बुद्धि बुद्धि से रहता है, मन तो है ही नहीं। और सुखदाता कौन हुआ है? वो सप्तधाम का सदावासी जो इस षष्ठी पर आकर के किसी मनुष्य तन के द्वारा मुकर्रर रथ के द्वारा उस मुकर्रर रथधारी आत्मा को कैसी भी स्टेज हो इस संसार में, कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सब प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों में ज्ञान के फोर्स के आधार पर सुख का ही अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। जो स्वयं सुखी जीवन व्यतीत करेगा वो ही दूसरों को सुख दे सकता है। खुद डॉक्टर होगा तो दूसरों को डॉक्टर बनाएगा, खुद इंजीनियर होगा तो दूसरों को इंजीनियर बनाएगा। तो जीवन मुक्त दाता कौन हुआ है? सारी मनुष्य सृष्टि का जीवन दाता, महामृत्यु के समय और किसी के पास जीवन रहता ही नहीं, सब काल के गाल में चले जाते हैं कि कोई रह जाता है, है? कोई मनुष्य मात्र शरीरधारी नहीं रहता सिवाय एक के। तो वो एक ही है कि जीवन में रहते रहते महामृत्यु के टाइम पर भी सुख ही अनुभव करता है, दुख का अनुभव नहीं करता। तो उन समझने वालों को यही बता देना चाहिए कि देखो ऊंचे ते ऊंचा बाप कौन, ऊंचे ते ऊंचा बाप कौन? शिव बाप। ऐसे नहीं ऊंचे ते ऊंचा बाप मनुष्य सृष्टि का बाप, वो ऊंचे ते ऊंचा नहीं है। वो ऊंचे ते ऊंचा बाप आकर के कहा करके इस पतित सृष्टि पर आकर के जब ये वर्षा देते हैं, क्या वर्षा देते हैं है? क्या वर्षा देते हैं? ऊंचे से ऊंचा बाप निराकारी है या साकारी है? निराकारी है। आकर के क्या वर्षा देते हैं? बाप है तो वर्षा देगा ना, तो क्या वर्षा देते हैं है? हाँ, वो अकूट ज्ञान का भंडार है। जिसका ज्ञान का भंडार कभी खूटता ही नहीं, ऐसा भंडार शास्त्रों ने गाया हुआ है, जिस भंडार में से सारा ही निकाल लो तो भी सारा ही बचता है, कुछ भी खूटता ही नहीं। ऐसा खूट ज्ञान का भंडार इस सृष्टि पर आकर के किसी एक को 100% आप समान ज्ञान सागर बनाता है या नहीं बनाता है? ऐसा ज्ञान सागर जिसकी गहराई को कोई भी आज तक नहीं नाप सका। सागर की गहराई को कोई नाप सका है? दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा हुआ जिसने सागर की गहराई को नापा हो? कभी नहीं। तो ऐसा ज्ञान सागर बना देता है, उस एक मनुष्य मात्र को। अशांति में भी क्या अनुभव करता है? शांति का अनुभव करता है। तो दुख की दुनिया तो पुरानी खत्म होनी चाहिए ना, कि चालू रहना चाहिए है? हाँ, एक के लिए सुख की दुनिया बना दी, शांति की दुनिया बना दी, उसके वाइब्रेशन में चारों ओर शांति रहती है या अशांति रहती है? है शांति रहती है। जो दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या दिखाया? नारायण का वाइब्रेशन दिखाया है। क्या क्या वाइब्रेशन दिखाया है? ज्ञान का प्रकाश है, है? ज्ञान का प्रकाश कहो, ज्ञान जल का भंडार में कहो, उसको कहते हैं नारायण, उसको कहते हैं भारत। भा माने ज्ञानी की रोशनी में, रत माने लगा रहने वाला, वो नारायण को सुख के वाइब्रेशन में दिखाया गया है, सुख की दुनिया में दिखाया है, या अंश मात्र दुख भी है? है सुख की दुनिया में है। तो जब उस एक को सुख मिल गया तो दुख की दुनिया पुरानी खत्म होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है होनी चाहिए। 5/11/66 की वाणी का दूसरा पेज। तो जिनके लिए पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए उनके लिए है ये महावारी महाभारत लड़ाई। क्या पुरानी दुनिया से जो मुक्त होना चाहते हैं उनको महावारी महाभारत युद्ध से पसार करना पड़े? युद्ध से डर के भागेंगे, महाभारी महाभारत युद्ध नहीं करेंगे, जो सत्य और असत्य का युद्ध है। तो क्या अंजाम होगा? सत्य की दुनिया में आएंगे, सत्यखंड सतयुग में आएंगे, या दुख की दुनिया में आएंगे? है दुख की दुनिया में आएंगे। जो सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे वो सुख की दुनिया में आएंगे, और जो सच्चखंड स्थापन करने के लिए सच्चाई के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, भाग खड़े होंगे या किनारा कर लेंगे, वो कहां जाएंगे? है संपूर्ण सुख की दुनिया में नहीं आ सकते। तो ये महाभारत लड़ाई तो बिल्कुल ही सहज समझाने की है, किया कि महाभारी महाभारत लड़ाई भारत की ही गाई हुई है, विदेशों की लड़ाई नहीं है। भारत और भारत के आसपास के देश ही इस लड़ाई में शरीक होते हैं, इस लड़ाई में सत्य और असत्य का युद्ध है। किसका युद्ध? सत्य का युद्ध और असत्य का युद्ध। सत्य क्या कहता है? सत्य कहता है क्या? और असत्य क्या कहता है क्या? असत्य कहता है अंधेरा कायम रहेगा, माने अज्ञान का अंधेरा हम हटने नहीं देंगे। बाप को किसी को पहचानने नहीं देंगे, न पहचानेंगे न दूसरों को पहचानने देंगे। और सत्य क्या कहता है? सत्य स्वयं ही बाप है। उस सत्य का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। वो अकेला बाप दम भरता है क्या? कि अब इस दुनिया में ज्ञान की रोशनी कायम रहेगी क्या? वो ज्ञान की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा ज्ञान की रोशनी में रहने वाला भारत, बा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, ऐसे भारत अविनाशी खंड में मैं आता हूँ, जहाँ ज्ञान की रोशनी कभी भी खत्म ही नहीं होती। तो ये महाभारी महाभारत लड़ाई समझाने की बहुत सहज है, क्योंकि ये एक ही महाभारी महाभारत लड़ाई लगी है 5000 वर्ष की ड्रामा में। सारे षष्ठी रूपी चक्र में ये एक ही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसका इतना बड़ा शास्त्र बना हुआ है। कितना बड़ा? जिससे बड़ा शास्त्र दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई बड़ा कमरा हो, उसमें ढेर की ढेर अलमारियां हो, चारों ओर अलमारियां और बीच में भी अलमारियां आगे पीछे, इतनी सारी अलमारियां उस महावारी महाभारत शास्त्र से भर जाती है। इतना बड़ा शास्त्र बना हुआ है, तो लड़ाई भी इतनी बड़ी होगी। वो तो हुई हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो दुनिया में सिखलाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी में कि मुसलमान आया, हिस्ट्री में दिखाते हैं ना, आया कहाँ? आया भारत में आया। अच्छा, ईरानी आया कहाँ? आया भारत में। फलाना आया, पीरा आया, वो तो हिस्ट्री में लगी ही आपस में लड़ाई है। हिंदुस्तानियों, ईरानियों, अफगानिस्तानियों या अरबियंस, ये तो है, इसको कहा जाता है महाभारी महाभारत युद्ध को कि अनेक धर्मों का विनाश। क्या और एक शब्द धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापना अर्थ है। एक सद्धर्म की स्थापना जिसका नाम है शक्ति सनातन देवी देवता धर्म, एक धर्म की स्थापना। और बुद्धि भी ऐसे कहती है, जबकि कलयुग के पीछे सतयुग आना चाहिए तो हिस्ट्री में मस्ट रिपीट, हिस्ट्री में ये बड़े से बड़ी लड़ाई रिपीट होनी चाहिए। किसकी हिस्ट्री? महाभारी महाभारत लड़ाई की। बाकी ये जो युद्ध होते रहे भारतवासियों के, ईरानियों के साथ, अफगानिस्तानियों के साथ, ये तो हुए हैं हिस्ट्री में, ये बड़े से बड़े युद्ध नहीं हैं। लेकिन बड़े से बड़ी लड़ाई है ये महाभारी महाभारत लड़ाई। तो ये लड़ाई उनकी है जो सतयुग में देवी देवता थे। किसकी लड़ाई है? जो सतयुग में देवी देवता थे उनकी लड़ाई है। क्यों लड़ते हैं? उनकी लड़ाई क्यों कहा? देवी देवताओं की? अरे देवी देवताएं लड़ते हैं क्या? हैं? देवी देवताएं नहीं लड़ते। फिर शास्त्रों में दिखाया है कि देवताओं और राक्षसों की लड़ाई हुई, दिखाया है ना? तो यादगार कहाँ की है? संगम युग में जो दिव्य गुणों को सपोर्ट करने वाली आत्माएं, देवताई आत्माएं हैं, जो दिव्य गुण भगवान आकर के सिखाते हैं कि दुर्गुणों को छोड़ो, राक्षसी गुणों को छोड़ो और दिव्य गुणों को, देवताई गुणों को धारण करो, ये तुम देवताओं की लड़ाई है। देवताओं की लड़ाई क्यों कहा? जैसे घर परिवार में दो भाई हो, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, बड़ा भाई ज्यादा पावरफुल होने के कारण, समाज में उसकी ज्यादा मान्यता होने के कारण, सरकार में उसकी ज्यादा मान्यता होने के कारण, शरीर से ज्यादा बलवान होने के कारण, माता पिता को ज्यादा आशा है उससे, इसलिए माता पिता से ज्यादा सपोर्ट मिलने के कारण वो सारी संपत्ति हथिया लेता है। ऐसा होता है कि नहीं है? तो छोटा भाई अपने हक के लिए लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? है? तो लड़ाई कौन शुरू करता है? छोटा भाई लड़ाई करता है, कोर्ट में जाता है, वो लड़ाई शुरू करता है। तो लड़ाई किसकी कही जाएगी? है? बड़ा भाई क्यों कही जाएगी? उसने कहां लड़ाई शुरू की? उसने लड़ाई थोड़ी शुरू की है। नहीं, लड़ाई तो छोटे ने शुरू की ना। तो ऐसे ही जो ये षष्ठी रूपी रंगमंच है, इसमें राक्षसी आत्माएं बड़ी माता से पहले उत्पन्न होती है, पावरफुल है, और अदिति छोटी माता से देवताओं का बाद में जन्म हुआ, वो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं, बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं पांडव। पांडव अर्थात देवी देवताएं लंबे समय तक गुप्त रहते हैं। तो कौरवों ने सारी संपत्ति हथिया ली, राज्य हथिया लिया तो लड़ाई कौन करेगा है, तो देवताओं की लड़ाई थी। तो ये उनकी देवी देवताओं की लड़ाई है। ओम शांति।